वेदांत दर्शन के विषय प्रवेश का यह तीसरा टॉपिक है सामान्य सिद्धांत। वादरायण का अनुसरण करते हुए शंकर और रामानुज दोनों मुख्यतः जगत विषयक इन मतों का खंडन करते हैं, जो यह मानता है, पहला, कि भौतिक परमाणु स्वभावतः आपस में मिलकर संसार को उत्पन्न करते हैं। दूसरा, जो यह मानता है कि अचेतन प्रकृति से स्वभावतः सांसारिक विषयों का विकास होता है। और तीसरा, जिसके अनुसार चेतन और अचेतन ये दो प्रधान तत्व हैं, जिनमें पहला जगत का निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण है, जिससे सृष्टि रचना होती है। शंकर और रामानुज दोनों इस विषय में भी सहमत हैं कि अचेतन तत्व से इस जगत की सृष्टि नहीं हो सकती, और द्वैतवाद भी उसके अनुसार जड़ और चेतन इन दो मूल तत्वों के सहयोग से सृष्टि होती है संतोषजनक नहीं। दोनों उपनिषद के सर्व खलु इदम ब्रह्म इस वाक्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि जड़ और चेतन दो पृथक सत्ताएँ नहीं हैं, किंतु एक ही मूल सत्ता ब्रह्म में आश्रित है। इस तरह शंकर और रामानुज दोनों अद्वैतवादी हैं, अर्थात दोनों एक मूल तत्व या ब्रह्म को मानते हैं, जो चराचर जगत में व्याप्त है। वादरायण जगदूषक भिन्न भिन्न मत मतांतरों की परीक्षा करते हैं। वे युक्ति और श्रुति प्रमाण दोनों की सहायता से प्रतिपक्षियों के मतों का खंडन करते हैं। इसमें मुख्य प्रतिपक्षियों के खंडन में जो स्वतंत्र युक्तियां दी गई हैं, उनका संक्षेपतः उल्लेख किया जाता है। सांख्य का यह मत कि सत्व, रज और तम इन तीनों से समन्वित अचेतन प्रकृति से जगत का विकास होता है, समीचीन नहीं, क्योंकि इस संसार में व्यवस्थित क्रम और नियम देखने में आते हैं, जिन्हें अचेतन कारणों का आकस्मिक कार्य नहीं माना जा सकता। जैसा सांख्य को स्वीकार करता है, शरीरों, इंद्रियों, कर्मेंद्रियों और विषयों का यह संसार भिन्न भिन्न जीवात्माओं के पूर्व कर्मानुसार फल भोग करने के निमित्त बना है, परंतु जड़ प्रकृति ऐसी श्रृंखलापूर्ण व्यवस्था कैसे कर सकती है? सृष्टि को उद्देश्य मूलक स्वीकार कर और साथ ही सृष्टिकर्ता का अस्तित्व अस्वीकार कर सांख्य ने अपने की एक विचित्र स्थिति में डाल दिया है। चैतन्य रहित उद्देश्य अबोधगम्य है, एक विचित्र स्थिति में डाल दिया है। बिना किसी चेतन परिचालक के उपाय और उपेय साधन और उद्देश्य का संयोजन संभव नहीं है। सांख्य चैतन्य रहित उद्देश्य का दृष्टांत यह देता है कि गाय के थन से बछड़े के निमित्त स्वतः दूध बहने लगता है, परंतु यहाँ इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि गाय चेतन जीव है और बछड़े के प्रेम से प्रेरित होकर ही उसका दूध बहने लगता है। जड़ पदार्थ के द्वारा किसी जटिल उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कार्य का कोई भी निर्विवाद दृष्टांत नहीं दिया जा सकता। सांख्य जिन पुरुषों को मानता है वे निष्क्रिय होते हैं, अतएव उनसे भी जगत की सृष्टि में सहायता नहीं मिल सकती। वैशेषिक का परमाणुवाद भी समीचीन नहीं, क्योंकि अचेतन परमाणु इस विलक्षण रूप से सुव्यवस्थित विश्व को उत्पन्न नहीं कर सकते। परमाणुओं की प्रेरणा के लिए वैशेषिक अदृष्ट का सहारा लेता है, परंतु इससे भी समस्या हल नहीं होती, क्योंकि वह भी तो अचेतन है। फिर इस बात का भी समाधान नहीं मिलता कि सृष्टि रचना के लिए पहले पहल परमाणुओं में क्रिया कैसे उत्पन्न हुई। यदि परमाणुओं में गति होना उनका स्वाभाविक गुण है, तो फिर उसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। इस तरह प्रलय कभी नहीं होना चाहिए। वैशेषिक ने आत्माओं का अस्तित्व भी माना है, परंतु उनमें स्वाभाविक चैतन्य का गुण नहीं माना। जब आत्मा का शरीर और इंद्रियों से संयोग होता है, तभी चैतन्य की उत्पत्ति होती है और सृष्टि के पूर्व ये रहते नहीं। अतः आत्मा को भी परमाणु का प्रवर्तक या प्रेरक नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मसूत्र में बौद्ध क्षणिकवाद के विरुद्ध भी तर्क उपस्थित किया गया है। क्षणिक वस्तुओं में कारणत्व नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य को उत्पन्न करने के लिए पहले कारण की उत्पत्ति होनी चाहिए और तब उस कारण में क्रिया होनी चाहिए। इस तरह एक क्षण से अधिक उसकी सत्ता रहनी चाहिए, जो क्षणिकवाद के विरुद्ध पड़ता है। यदि क्षणिक तत्वों की किसी तरह उत्पत्ति मान भी लेते हैं, तो फिर उनका संयोग नहीं बनता, क्योंकि बौद्ध मतानुसार कोई द्रव्य नहीं माना गया है जो इन तत्वों को एक साथ मिलाकर अभिष्ट विषयों को उत्पन्न करे। चैतन्य स्वयं क्षणिक तत्वों के संयोग का परिणाम माना गया है, अतः सृष्टि के पूर्व उसकी सत्ता नहीं रहती। इस तरह अचेतन कारणवाद वाली आपत्ति यहाँ भी उपस्थित हो जाती है। बौद्ध विज्ञानवाद के विरुद्ध वेदांति मुख्यतः ये युक्तियाँ देते हैं। पहला, बाह्य पदार्थों की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सबको प्रत्यक्ष होती हैं। किसी घट पट या स्तंभ को प्रत्यक्ष करते हुए भी उसे नहीं मानना वैसा ही होगा जैसे भोजन करते समय रसास्वादन को नहीं मानना। दूसरा, यदि साक्षात उपलब्धि का विश्वास नहीं किया जाए तो विज्ञानों अथवा मानसिक भावों या प्रत्ययों का भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरा, यदि यह कहा जाए कि मानसिक प्रत्यय ही भ्रमवश बाह्य विषय के समान आभासित होते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि कोई बाह्य पदार्थ सत्य नहीं माना जाए, नहीं तो यह कहना उसी प्रकार का होगा जैसे देवदत्त वंध्यापुत्र के समान दिखाई देता है। चौथा, जब तक घटपट आदि भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष विषयों की सत्ता नहीं मानी जाती तब तक घट ज्ञान को पट ज्ञान से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान दोनों में ही है। पांचवा, स्वप्न विषय और प्रत्यक्ष विषयों में महान अंतर है। स्वप्न के विषय जागृत अनुभव से बाधित और खंडित होते हैं परंतु प्रत्यक्ष विषय नहीं। जागृत अवस्था के प्रत्यक्ष विषय तब तक असत्य नहीं कहे जा सकते जब तक वे किसी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होते। इस प्रकार विज्ञानवाद अथवा शून्यवाद से जगत की संतोषजनक उत्पत्ति नहीं होती। शैव पाशुपत कापालिक और कालामुख मतों के अनुसार जगत का उपादान कारण पंचभूत और निमित्त कारण ईश्वर है। वेदांत इस मत को नहीं मानता। पहली बात तो यह है कि यह वेद मत मूलक नहीं है, केवल साधारण अनुभव और युक्ति के आधार पर यह मत स्थापित है। ऐसी अवस्था में इसे प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध नहीं पड़ना चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हमारा अनुभव जाता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से युक्त शरीर के द्वारा ही चेतन पुरुष भौतिक तत्वों पर कोई व्यापार कर सकता है। पुनश्च उसकी क्रिया किसी उद्देश्य या प्रयोजन से ही प्रेरित होती है, यथा सुख की प्राप्ति या दुख का निवारण। परंतु ईश्वर को अशरीरी निर्विकार और पूर्ण माना गया है। ऐसी अवस्था में यह समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने सृष्टि की और क्यों और कैसे। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक युग से ही ईश्वर के दो रूप माने गए हैं। ईश्वर संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है परंतु उसकी सत्ता जगत में ही सीमित नहीं है, वह इससे परे भी है, वह विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत भी। ईश्वर का यह उभयात्मक रूप उपनिषदों और अनुवर्ती वेदांत साहित्य में पाया जाता है। हाँ, सबों की कल्पना ठीक एक सी नहीं है। ईश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है। इस सिद्धांत को पैनथिज्म कहते हैं या सर्वेश्वरवाद कहते हैं और वेदांत का मत भी सामान्यतः यही समझा जाता है। पैनथिज्म का शाब्दिक अर्थ है वह मत जिसके अनुसार सब कुछ ईश्वर ही है, ऑल इज गॉड। परंतु यदि सब कुछ ईश्वर ही है तो यह विचार उठता है कि क्या ईश्वर केवल विश्व ही है अथवा उससे भी अधिक। जब भेद किया जाता है तब प्रथम मत के लिए सामान्यतः पैनथिज्म सर्वेश्वरवाद या केवलोपादानेश्वरवाद शब्द का व्यवहार किया जाता है और दूसरे मत के लिए पैनथिज्म या निमित्तोपादानेश्वरवाद का। अतः इस भेद को स्पष्ट करने के लिए और इस बात का स्मरण रखने के लिए कि वेदांत का ईश्वर केवल विश्व रूप ही नहीं विश्वातीत भी है, वेदांत के ईश्वरवाद को पैनथिज्म या निमित्तोपादानेश्वरवाद कहना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उपनिषदों और पाश्चात्यकालीन वेदांत साहित्य में ब्रह्म शब्द का व्यवहार परम तत्व या मूल सत्ता या अल्टीमेट रियलिटी के अर्थ में भी किया जाया है और सृष्टिकर्ता के अर्थ में भी, जिन्हें उपास्य समझा जाता है। इस दूसरे अर्थ को जताने के लिए अधिकतर ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, पर ब्रह्म और ईश्वर इन दोनों नामों के व्यवहार से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये दो पृथक सत्ताएं हैं। वेदांतियों में इस बात को भी लेकर एक मत है कि ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान श्रुतियों के आधार पर ही होता है, युक्ति के द्वारा नहीं। चित्त शुद्ध होने पर महात्माओं को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, परंतु प्रारंभ में ईश्वर का जो परोक्ष ज्ञान होता है वह शास्त्रीय वचनों के प्रमाण से ही। जिस तरह न्याय आदि ईश्वर वादी दर्शनों में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए युक्तियां मिलती हैं, उस तरह वेदांत में नहीं। वेदांत ने युक्तियों के द्वारा यही सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ईश्वर के विषय में कोई भी वैदिक मत पर्याप्त नहीं ठहरता और केवल वैदिक विचार ही सत्य है। वेदांत का यह मत अंधविश्वास सा जान पड़ता है और बहुधा इसकी कटु आलोचना भी की गई है, परंतु एक बात विचारणीय है कि बहुत से पाश्चात्य दार्शनिकों ने, जैसे कांट, लॉर्जा वगैरह ने भी ईश्वर विषयक प्रमाणों को अपर्याप्त समझा है। लॉर्जा ने तो साफ कहा है कि जब तक हम ईश्वर में विश्वास को लेकर आगे नहीं बढ़े, तब तक केवल तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता। वेदांत के अनुसार भी यह प्रारंभिक विश्वास धार्मिक जीवन या धार्मिक विचार के लिए आवश्यक है। मनुष्य अपने में अपूर्णता का अनुभव कर पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहता है, परंतु अज्ञान के अंधकार में भटकता फिरता है। जब शास्त्र के द्वारा उसे ज्ञान का प्रकाश होता है, तब ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाता। उपनिषद आदि शास्त्र ऋषियों के प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभूतियों का संग्रह है। अतः शंकर कहते हैं प्रत्यक्षम श्रुति ही। इन्हीं शास्त्रीय वचनों को समझने के लिए शंका समाधान के द्वारा तत्वार्थ निरूपण करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क केवल विचार की एक पद्धति मात्र है, जिसके प्रयोग के लिए कोई आधार चाहिए। शास्त्रों के द्वारा वही आधार प्राप्त होता है जिस पर हम विचार, तर्क या मनन कर सकते हैं। वेदांती श्रुति के आधार पर ईश्वर को मानकर चलते हैं और श्रुति के वचनों को उत्पत्ति और संगति के लिए तर्क का अवलंबन करते हैं। उपनिषदों के द्वारा वे यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ईश्वर अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सृष्टि स्थिति और लय का कारण है। प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने ढंग से ईश्वर को समझने की चेष्टा करता है। वादरायण के सूत्रों का मुख्य विषय है ब्रह्म या ईश्वर, अतः उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, परंतु उनका अधिकारी मनुष्य ही है जो शरीरी जीव है, अतः उन्हें शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। इस तरह वेदांत में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनुष्य के ज्ञान और मुक्ति के लिए ही वेदांत दर्शन की रचना हुई, परंतु मनुष्य का यथार्थ स्वरूप क्या है? उपनिषदों का कहना है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर से भिन्न मनुष्य की कोई पृथक सत्ता नहीं। शंकर और रामानुज दोनों के यह मान्य है, परंतु जीव ब्रह्म में ठीक क्या संबंध है, इस विषय को लेकर दोनों में मतभेद है। वेदांत दर्शन का दूसरा टॉपिक है शंकर का अद्वैत। शंकर के अद्वैत का पहला टॉपिक जगत विचार। उपनिषदों में एक और सृष्टि का वर्णन किया गया है और दूसरी ओर नाना विषयात्मक संसार को मिथ्या कहा गया है। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे किया जाए? यदि सृष्टि को सत्य मानते हैं तो फिर नानात्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? शंकर इस समस्या का समाधान इस प्रकार करते हैं। उपनिषदों की सामान्य विचारधारा और दृष्टिकोण को देखते हुए सृष्टि की बातें उन्हें अनमेल से जान पड़ती हैं। यदि ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण और निर्विकार है तो फिर वह सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है? यदि उसका कर्तव्य सत्य है तो फिर वह निर्गुण या अविकारी कैसे? ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। फिर शास्त्रों में यह बात कही गई है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर नानात्व दूर हो जाता है। यदि सृष्टि को सत्य मान लिया जाए तो यह भी समझ में नहीं आ सकता। यदि जगत सत्य है तो फिर यह तिरोहित कैसे हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान का उदय होने पर केवल मिथ्या ज्ञान सत्य में असत की प्रतीति नष्ट हो सकती है। जो सत है सो कैसे नष्ट होगा? यहाँ शंकर को जगत के रहस्य की एक कुंजी मिल जाती है। यदि संसार की तुलना एक स्वप्न या भ्रम से की जाए तो उसकी सृष्टि और पीछे तत्वज्ञान हो जाने पर उसका तिरोभाव, ये दोनों बातें समझ में आ सकती हैं। उपनिषदों में भी इसका संकेत पाया जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक ही इंद्रिय माया के प्रभाव से नाना रूपों में प्रकट होते हैं। वृहदारण्यक में भी यही बात कही गई। श्वेताश्वर में भी स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्म की माया ही प्रकृति है। माया ईश्वर की शक्ति है। जिस तरह अग्नि की दाहकता अग्नि से अभिन्न है, उसी तरह माया भी ईश्वर से अभिन्न है। इसी माया के द्वारा मायावी ईश्वर वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि की अद्भुत लीला दिखलाती है। इस लीला को अज्ञानी सत्य समझ लेते हैं, परंतु जो तत्वदर्शी हैं वे इस लीला को समझ जाते हैं और इस मायामय संसार में केवल ब्रह्म मात्र उन्हें सत्य जान पड़ता है। जीवन में साधारणतः किस प्रकार भ्रम होते हैं, यदि हम समझने की कोशिश करें तो यह देखने में आएगा कि वास्तविक आधार या अधिष्ठान का ज्ञान नहीं रहने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर उसमें सांप का भ्रम नहीं होता। यदि हम रस्सी को रस्सी जानते तो उसके विषय में भ्रम नहीं होता, परंतु केवल रस्सी को ज्ञान मात्र ही भ्रम का कारण नहीं है, क्योंकि वैसी हालत में जिसे रस्सी का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वह सर्वदा सांप ही सांप देखा करता है। जिस अविद्या के कारण भ्रम उत्पन्न होता है वह केवल अधिष्ठान का आवरण ही नहीं करती, उस पर विक्षेप भी करती है। आवरण का अर्थ है यथार्थ स्वरूप को ढक देना, विक्षेप का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना। ये दोनों अविद्या या ज्ञान के कार्य हैं जिनसे हमारे मन में भ्रम उत्पन्न होता है। जब कोई बाजीगर जादू का खेल दिखाकर हमें भ्रम में डाल देता है, जैसे एक ही सिक्के को अनेक सा बनाकर दिखा देता है, तब दर्शक तो भ्रम में पड़ जाते हैं, परंतु स्वयं बाजीगर उस भ्रम में नहीं पड़ता। हमें वह भ्रम या अविद्या अज्ञान के कारण पैदा होती है, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप छिप जाता है और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि कोई दर्शक उस एक सिक्के का असली रूप ही देखता रहे तो जादू की खड़ी उसे भुलावे में नहीं डाल सकती। यह तो हमारी दृष्टि से हुआ, जादूगर की दृष्टि से वह भ्रम केवल माया करने की शक्ति है, जिससे दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं, स्वयं जादूगर नहीं। इसी तरह सृष्टि की माया भी दो तरह से समझी जा सकती है। ईश्वर के लिए वह केवल लीला की इच्छा है, ईश्वर स्वयं उस माया से मुग्ध नहीं होता। हम लोग जो अज्ञानी हैं उसे देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और एक ब्रह्म के बदले अनेक विषय देखने लग जाते हैं। इस तरह माया हम लोगों के लिए भ्रम का कारण है। इस अर्थ में माया को अज्ञान या अविद्या भी कहते हैं। इसके दो कार्य हैं, जगत के आधार ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप छिपा देना और उसे संसार के रूप में आभासित करना। इस विशेष शक्ति के कारण माया को भावरूप अज्ञान कहते हैं। सृष्टि का आरंभ कभी किसी काल में हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः माया को अनादि मानते हैं। जो गिने ब्रह्मज्ञानी संसार की भूल भुलैया में नहीं पड़ जाते, जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, उनके लिए न कोई भ्रम है न माया, उनके लिए ईश्वर भी माया भी नहीं। रामानुज श्वेता स्वतर का अनुसरण करते हुए माया का भी उल्लेख करते हैं, परंतु माया से वह ईश्वर की वास्तविक सृष्टि करने की शक्ति को समझते हैं। अथवा ब्रह्म में अवस्थित नित्य अचेतन तत्व को सुनकर भी माया को ब्रह्म की शक्ति मानते हैं, परंतु उनके अनुसार यह शक्ति ब्रह्म का नित्य स्वरूप नहीं जैसा कि रामानुज मानते हैं, परंतु एक इच्छा मात्र है जिसको वे चाहें तो परित्याग कर सकते हैं। जो ज्ञानी हैं और संसार की मृगमरीचिका के फेर में नहीं पड़ते, उन्हें ईश्वर को मायावी समझने का कोई प्रयोजन नहीं। शक्ति रूप में माया ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है, शक्ति ब्रह्म से उसी तरह अभिन्न और अविच्छेद है जैसे दाहकता अग्नि से और संकल्प मन से। जब संकर प्रकृति को माया कहते हैं तब उनका अर्थ यही होता है कि यह रचनात्मिका शक्ति या माया ही उन लोगों के लिए संसार की प्रकृति आदि या मूल कारण है जो इसे संसार को देख रहे हैं। अतएव शंकर और रामानुज का भेद संक्षेप में यह है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म में अवस्थित अचित तत्व में वास्तविक परिवर्तन होता है। शंकर का मत है कि ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। किसी द्रव्य के विकार का आभास जैसे रस्सी का सांप के रूप में दिखाई पड़ना विवर्त कहलाता है, और वास्तविक विकार जैसे दूध का दही बन जाना परिणाम। अतः शंकर का उपयुक्त मत विवर्तवाद कहलाता है। इसके विपरीत सांख्य का मत अर्थात प्रकृति वस्तुतः बदल कर जगत के रूप में परिणित हो जाती है परिणामवाद कहलाता है। रामानुज का मत भी एक तरह का परिणामवाद है, क्योंकि वे मानते हैं कि ब्रह्म का अचित अंश ही संसार के रूप में परिणित होता है। विवर्तवाद और परिणामवाद दोनों इस बात में सहमत हैं कि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है। अतः दोनों ही सत्कार्यवाद अर्थात कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में सत या विद्यमान था, वह कुछ नई वस्तु नहीं है, इसी के अंदर आते हैं। जहाँ जो वस्तु नहीं है उसे वहाँ कल्पित करना अध्यास कहलाता है। वर्तमान मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक तरह का बहिरारोप कहेंगे। जहाँ जहाँ भ्रांत प्रत्यक्ष होता है वहाँ वहाँ ऐसा अध्यास या प्रोजेक्शन होता है। जिस तरह रज्जु में सर्प अध्यस्त हो जाता है उसी तरह ब्रह्म में जगत अध्यस्त हो जाता है। उपनिषदों में जो सृष्टि का वर्णन आता है वह इस अर्थ में कि ब्रह्म की माया में संसार बन जाता है। शंकर इसे मानते हैं कि माया को कहीं कहीं अव्यक्त या प्रकृति भी कहा गया है, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त है, परंतु इसे सांख्य की प्रकृति नहीं समझ लेना जो स्वतंत्र मानी जाती है। वेदांत की प्रकृति ईश्वर की माया है और उन्हीं पर सदा आश्रित है। उपनिषदों की तरह वेदांत ग्रंथों में भी इस बात को लेकर मत है कि नहीं कि ब्रह्म की माया से किस प्रकार और किस क्रम से जगत के विषयों का आविर्भाव हुआ है। सबसे प्रचलित मत यह है कि आत्मा या ब्रह्म से पहले 5 सूक्ष्म भूतों का इस क्रम से आविर्भाव होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों का पुनः 5 प्रकार से संयोग होता है, जिससे 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। जब 5 इस सूक्ष्म भूतों का संयोग इस अनुपात से होता है कि आधे में आकाश तत्व और बाकी आधे से शेष 4 तत्व रहते हैं, तब स्थूल आकाश का प्रादुर्भाव होता है। इसी तरह से 4 स्थूल भूत भी उत्पन्न होते हैं। जैसे स्थूल वायु भूत की उत्पत्ति में सूक्ष्म भूतों का संयोग इस प्रकार होता है, 1/2 वायु, 1/8 आकाश, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। इस क्रिया को पंचीकरण कहते हैं। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर भूतों से बना है और स्थूल शरीर तथा अन्य सांसारिक विषय स्थूल भूतों से, जो 5 सूक्ष्म तत्वों के संयोग से बनते हैं। शंकर सृष्टि के इसी क्रम को मानते हैं, परंतु वे समस्त प्रक्रिया को विवर्त या अध्यास मानते हैं। विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमि वेदांतवादे परिणामवादः व्यवस्थिते अस्मिन् परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः। शंकर के इस विवर्तवाद में कई गुण हैं। एक तो यह कि शास्त्रीय वचनों की संगत व्याख्या इस मत में हो जाती है। दूसरे सृष्टि का अधिक युक्ति संगत कारण यह बतलाता है। यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर सृष्टि करता है और अचेतन प्रकृति जैसे किसी अन्य वस्तु को लेकर जगत की रचना करती है, तब ईश्वर के अतिरिक्त उस दूसरी वस्तु की सत्ता भी माननी पड़ती है और इस तरह ईश्वर ही एकमात्र सर्वव्यापी सत्ता नहीं रह जाते, उनकी असीमता नष्ट हो जाती है। परंतु यदि उनकी प्रकृति को सत्य भी मानते हैं और ईश्वर में आश्रित भी और इस संसार को उसका वास्तविक परिणाम मानते हैं, तो एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति यूं तो ईश्वर का एक अंग मात्र है अथवा संपूर्ण ईश्वर से अभिन्न है। यदि पहला विकल्प मान लिया जाए, जैसे रामानुज मानते हैं, तो यह आपत्ति आ जाती है कि ईश्वर भी भौतिक द्रव्यों की तरह सावयव है और अतएव उन्हीं की तरह विनाशी सिद्ध हो जाता है। यदि दूसरा विकल्प अर्थात प्रकृति संपूर्ण ईश्वर से अभिन्न है माना जाए, तो यह बाधा उपस्थित होती है कि तब प्राकृतिक विकास का अर्थ हो जाता है संपूर्ण ईश्वर का जगत के रूप में परिणित हो जाना। वैसी अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि होने के उपरांत कोई ईश्वर नहीं रहता। यदि ईश्वर में सचमुच विकार होता है, तो वह विकार चाहे आंशिक हो या पूर्ण, वह ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं रहता। विवर्तवाद को मान लेने पर ये कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि विकार आभास मात्र है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है। इन कठिनाइयों का अनुभव रामानुज ने भी किया है, परंतु उनका विचार है कि सृष्टि का रहस्य मानव बुद्धि के परे है और शास्त्रों में जो सृष्टि का वर्णन दिया गया है वही हमें मान्य होना चाहिए। रही कठिनाइयों की बात, सो एक बार जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और विचित्र सृष्टिकारी मान लेते हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। शंकर भी यह मानते हैं कि बिना श्रुति की सहायता से केवल तर्क के सहारे सृष्टि का रहस्य ज्ञात नहीं होता, परंतु वे कहते हैं कि स्वयं श्रुतियों में ही एक से अनेक आभासित होना बतलाया गया है। शास्त्र ज्ञान के अनुसार हम अपनी तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अपने जीवन के साधारण भ्रम के अनुभवों से इस सृष्टि रूपनी माया के रहस्य को यथासंभव समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। जगत विचार का यह पहला टॉपिक है विवर्तवाद की समर्थक युक्तियां। विवर्तवाद के पक्ष में शंकर की युक्तियां और उनका माया, अविद्या तथा अध्यास विषयक सिद्धांत, ये सब अद्वैतवाद के प्रबल यौक्तिक आधार हैं, जो श्रुति अथवा ब्रह्म विषयक अपरोक्ष अनुभूत में विश्वास नहीं करते, किंतु सामान्य अनुभव और तर्क के द्वारा जगत का वास्तविक रूप समझना चाहते हैं। वे भी तार्किक या दार्शनिक दृष्टि से इन युक्तियों को बहुत अधिक मूल्यवान समझेंगे। शंकर के अनुयायियों ने अद्वैत की पुष्टि में जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, जैसे तत्व प्रदीपिका या चित्सुखी, अद्वैत सिद्धि, खंड खंड खांत्य, उनमें ऐसी ऐसी सूक्ष्म और चमत्कृत युक्तियां हैं जिनकी गहराई को पाश्चात्य दर्शन के गंभीर ग्रंथ भी शायद ही पा सकते हैं। वेदांत का मूल है श्रुति या अपरोक्ष अनुभूति, तथापि वह इस बात को नहीं भूलता कि जब तक मनुष्य की तर्क बुद्धि संतुष्ट नहीं होती और सहज अनुभव के आधार पर युक्ति द्वारा उसे कोई बात समझ में नहीं आ जाती, तब तक केवल दूसरे की उच्चतम अपरोक्ष अनुभूति को वो नहीं मान सकता। वेदांत के विद्यार्थी को अद्वैतवाद के इस स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए नीचे यह दिखाया जाता है कि शंकर सामान्य अनुभव को तर्क की कसौटी पर कसकर किस तरह अपने मत की स्थापना करते हैं। पहला, किसी कार्य और उसके उपादान कारण में क्या संबंध है। यदि इसकी सूक्ष्म विवेचना की जाए तो ज्ञात होता है कि कार्य कारण से भिन्न वस्तु नहीं है। मिट्टी का बर्तन मिट्टी के अलावे और कुछ नहीं, सोने का गहना सोना मात्र है। पुनः कार्य अपने उपादान कारण से अविच्छेद है, उसके बिना कार्य नहीं रह सकता। हम मिट्टी से बर्तन को पृथक नहीं कर सकते, न सोने से गहने को अलग कर सकते हैं। अतः ऐसा समझना गलत है कि कार्य एक नई चीज है जो पहले नहीं थी और अब हुई है। तत्त्वतः वह सर्वदा अपने उपादान कारण में विद्यमान थी। वस्तुतः हम अभाव पदार्थ से उत्पन्न होने की या असत से सत होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। द्रव्य का केवल रूपांतर होना, एक रूप से दूसरे रूप में आना हम सोच सकते हैं। यदि असत में सत की उत्पत्ति संभव होती तो बालू से भी तेल निकल सकता था, न कि केवल तेल आदि वस्तुओं से। निमित्त कारण जैसे तेली या कुम्हार या सोनार की क्रिया से किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, केवल उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। अतएव कार्य को कारण से अनन्य और उसमें पूर्व से विद्यमान जाना चाहिए। कार्य कारण की ही अवस्था मात्र है। कारणस्य एव संसार मात्रम कार्यम। इन युक्तियों के आधार पर शंकराचार्य सत्कार्यवाद का अवलंबन करते हैं। सांख्य भी इसी मत के अनुयायी है, परंतु शंकर का कहना है कि सांख्य सत्कार्यवाद का तत्व नहीं समझ पाता, क्योंकि सांख्य का मत है कि यद्यपि कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है, तथापि उपादान में वास्तविक विकार है। इसका अर्थ यह है कि जो आकार असत था वह सत हो जाता है। इस तरह सत्कार्यवाद का सिद्धांत टूट जाता है। यदि इस सिद्धांत का आधार पक्का है तो हमें उसको सर्वथा मानने को भी तैयार रहना चाहिए और ऐसे मत का अवलंबन नहीं करना चाहिए जिससे यह सिद्धांत भंग हो जाए। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि कार्य में जो एक नया आकार होता है, इस प्रत्यक्ष बात को कैसे अस्वीकार किया जाए। शंकर प्रत्यक्ष को अस्वीकार नहीं करते, केवल उसका यथार्थ तत्व क्या है उसी का अनुसंधान करते हैं। क्या सांख्य का यह समझना ठीक है कि आकार का परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन है? यह तब ठीक होता जब आकार की अपनी अलग सत्ता होती, परंतु सूक्ष्म विवेचना करने से ज्ञात होता है कि आकार द्रव्य या उपादान की एक अवस्था मात्र है जो उस द्रव्य से अविच्छेद है। उसके पृथक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकार की जो कुछ सत्ता है वह द्रव्य या वस्तु को ही लेकर, अतएव आकार या आकृति के परिवर्तन को देखकर उसे वास्तविक परिवर्तन समझना ठीक नहीं। इसके विपरीत यह देखने में आता है कि आकारिक परिवर्तन होने पर भी कोई वस्तु वहीं कहीं रह जाती है। जैसे देवदत्त सोते उठते या बैठते हुए भी देवदत्त ही कहा जाता है। यदि आकार परिवर्तन का अर्थ वास्तविक विकार होता तब यह बात कैसे होती। इसके अतिरिक्त यदि आकार या और किसी गुण की द्रव्य से पृथक सत्ता मान ली जाए तो फिर गुण में और द्रव्य में कैसे संबंध होता है, यह समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि दो पृथक सत्ताओं में बिना किसी वस्तु की सहायता से संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब यदि हम इस तीसरी वस्तु की कल्पना करते हैं तो उसका पहली और दूसरी वस्तु से संबंध जोड़ने के लिए चौथी और पांचवी वस्तुओं की भी कल्पना करनी पड़ेगी। फिर उन चौथी और पांचवी का अपनी अपनी अपेक्षित वस्तुओं से संबंध जोड़ने के लिए भी उसी प्रकार अन्य संबंधों की कल्पना करनी पड़ती है। इस तरह अनावस्था दोष का प्रसंग आ जाएगा। अतएव गुण और द्रव्य में उस तरह की संबंध कल्पना करने से हम पार नहीं पा सकते। संक्षेप में यह कहिए कि गुण और उसके द्रव्य में पार्थक्य की कल्पना करना अयुक्ति संगत है। आकार द्रव्य से भिन्न सत्ता नहीं है, अतएव यदि द्रव्य वही कायम रहे तो केवल आकार परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। हम देख चुके हैं कि जब कोई कार्य उत्पन्न होता है तब द्रव्य में विकार नहीं आता। कारण कार्य का संबंध वास्तविक परिवर्तन सूचित नहीं करता, और जो परिवर्तन होता है वह कारण के ही द्वारा। कि यद्यपि वस्तु का विकार नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि यद्यपि हम विकारों को देखते हैं तथापि बुद्धि उन्हें सत्य नहीं मान सकती। अतः उनका जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रत्यक्षाभास ही समझना चाहिए। हमें आकाश नीला दिख पड़ता है, सूर्य में गति दिखलाई पड़ती है, परंतु हम इन बातों को सत्य नहीं मानते क्योंकि वे युक्ति के द्वारा असत्य प्रमाणित हो जाती है। ऐसी प्रत्यक्ष किंतु असत्य घटना को आभास कहते हैं, जो वास्तविक सत्ता नहीं है। इसीलिए सभी विकारों को आभास मात्र समझना चाहिए, वास्तविक सत्य नहीं। इस तरह हम केवल युक्ति द्वारा भी विवर्तवाद पर पहुंच जा सकते हैं। इसके अनुसार हम जो परिवर्तन देखते हैं वह केवल मानसिक आरोप या विक्षेप मात्र है। इसी को संकर अध्यास कहते हैं। इस तरह की मिथ्या कल्पना का कारण अविद्या है, जो हमें भ्रम में डाल देती है और असत में सत का आभास कराती है। इसको संकर अज्ञान, अविद्या या माया कहते हैं। इसी कारण संसार की प्रतीति होती है। सेकंड, दूसरा, यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि यह परिवर्तनशील संसार आभास मात्र है तो वह कौन सी वस्तु या पदार्थ है जो भिन्न भिन्न विषयों के रूप में हमें आभासित होती है। सामान्यतः हम उसी को द्रव्य कहते हैं जो कुछ गुणों का आश्रय होता है। इस अर्थ में घट या पट द्रव्य है, परंतु हम देख चुके हैं कि घट से पृथक उसके रूप आदि गुणों की सत्ता नहीं होती और घट की सत्ता उसके उपादान कारण मृतिका में से भिन्न नहीं होती। यहाँ मृतिका ही सत्य या वास्तविक द्रव्य है और घट उसका एक रूप या आकार मात्र, परंतु मृतिका स्वयं विकार को प्राप्त होने वाली वस्तु है। उनका मृतिका भाव नष्ट हो जाता है, अतः उसे भी यथार्थ वस्तु या परमार्थ नहीं कह सकते। यह घट की अपेक्षा अधिक स्थायी जरूर है, पर यह भी किसी अन्य द्रव्य का एक रूप मात्र है। जो द्रव्य उस मृतिका के सभी विकारों में विद्यमान रहता है, जो मृतिका के आधारभूत कारण में भी वर्तमान रहता है और मृतिका का नाश हो जाने पर उसके परिणाम रूप द्रव्यांतर में भी। इस तरह यदि सभी द्रव्य नामधारी पदार्थ विकारी हैं तो वास्तविक द्रव्य वह है जो सभी विषयों में एक सा बना रहता है। हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस अथवा सत्ता सभी विषयों में सामान्य है। प्रत्येक विषय में चाहे उसका रूप कुछ भी हो, सत्ता देखने में आती है। अतः इसकी सत्ता को विषय संसार मूल द्रव्य या उपादान कारण समझना चाहिए। जब हम अपने परिवर्तनशील मनोवृत्तियों पर ध्यान देते हैं तब वहां भी देखते हैं कि प्रत्येक भाव या विचार का विषय चाहे जो कुछ हो उसमें सत्ता तो अवश्य रहती है। भ्रमात्मक विचार का विषय सत्य नहीं होता तो भी वह विचार अवगति के रूप में तो अवश्य ही सत्य है। सुषुप्तावस्था या मूर्छावस्था निर्विषयक होने पर भी सत होती है। इस तरह सत्ता एक अव्यभिचारी वस्तु है जो बाह्य और आभ्यांतरिक सभी अवस्थाओं में अनुपात से रहती है, अनुगत रहती है। अतः इसी सत्ता को मूल द्रव्य या उपादान कारण मानना चाहिए। सभी बाह्य विषय या आभ्यांतरिक वृत्तियां इसी सत्ता में नाना रूप है। इस तरह हम देखते हैं कि शुद्ध सत्ता जो समस्त संसार का मूल कारण है नाना रूपों में प्रकट होने पर भी स्वयं निराकार है, भिन्न भिन्न भागों में होने पर भी यथार्थता निर्वयव है, शांत विषयों में भासमान होने पर भी वस्तुतः अनंत है। शंकर इस अनंत निर्विशेष सत्ता को ही संसार का मूल तत्व या उपादान कहते हैं। वे इसी सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। तीसरा, इस ब्रह्म को चेतना सत्ता माना जाए या अचेतन। साधारणतः हम बाह्य विषयों को अचेतन और अपने मन की आभ्यांतरिक वृत्तियों को चेतना समझते हैं, परंतु चैतन्य की कसौटी क्या है? मन की वृत्ति को हम चैतन्य कहते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व स्वयं प्रकाश है, परंतु जब हम बाह्य संसार को देखते हैं तो उसका अस्तित्व भी स्वयं अपने को प्रकाशित करता है। यह भ्रांति या प्रकाश की शक्ति बाह्य और आभ्यांतरिक दोनों पदार्थों में पाई जाती है। अतएव कहा जा सकता है कि दोनों पदार्थों में जो अनुगत सामान्य तत्व सत्ता है वह स्वयं प्रकाशक है, अर्थात उसमें अपने को प्रकट करने का स्वाभाविक गुण है। अतः ब्रह्म को स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप मानना अधिक समीचीन है। सूक्ष्मतया विचार करने से विदित हो जाएगा कि प्रकाश या भान ही सत पदार्थों को असत से पृथक करता है। जो असत है जैसे बंध्यापुत्र, वह क्षण भर के लिए भी अपने को प्रकट नहीं कर सकता। यह दो आपत्तियां की जा सकती हैं। एक तो यह कि कुछ सत पदार्थ भी दिखाई नहीं देते और दूसरी यह कि असत पदार्थ भी। जिनका अस्तित्व नहीं है दिखाई देते हैं, जैसे स्वप्न या मृग मरीचिका आदि भ्रमों में। प्रथम आक्षेप का यह उत्तर है कि सत पदार्थों के अप्रत्यक्ष या अप्रकाश का कारण है प्रकाश के मार्ग में बाधा, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश होते हुए भी बादलों के कारण छिप जाता है, अथवा स्मृति में बाधा उपस्थित होने पर कोई अनुभूत विषय भी प्रकाशित नहीं होता। दूसरे आक्षेप का उत्तर यह है कि भ्रम के अधिष्ठान में भी कोई सत्ता अवश्य रहती है और उसी का हमें आभास होता है। इस तरह सत्ता का अर्थ है स्वयं प्रकाशकता अथवा चैतन्य। चौथा, इस सिद्धांत की पुष्टि एक दूसरी दृष्टि से भी होती है। जहाँ जहाँ सत्ता का प्रकाश होता है वहाँ वहाँ तद्विषयक बुद्धि भी विद्यमान रहती है, जैसे एक बाह्य विषय मृतिका अथवा मिट्टी भी मंद बुद्धि है या मिट्टी है ऐसी बुद्धि के रूप में प्रकाशित होती है। जब हम स्मृतिका को घटक के रूप में परिणित देखते हैं तब हमारी मंद बुद्धि घट बुद्धि या घट है ऐसी बुद्धि में बदल जाती है। काल्पनिक विषय उस विषय की बुद्धि मात्र है, भ्रम का विषय भी केवल तद विषयक बुद्धि मात्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ किसी प्रकार की सत्ता रहती है वहाँ बुद्धि भी अवश्य ही विद्यमान रहती है। इस तरह अनेक युक्तियों में शंकर श्रुति के इस वाक्य का मंडन करते हैं कि जगत का आधार ब्रह्म है जो शुद्ध सत्ता एवं चैतन्य स्वरूप है और स्वतः निर्विकार होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करता है। ब्रह्म सत्ता या चैतन्य हमारी सभी अनुभूतियों में या सभी भासमान विषयों में वर्तमान है, किंतु उसके रूप नाना होते हैं और एक प्रकार की प्रतीति जैसे स्वप्न या भ्रम दूसरे प्रकार की प्रतीति जैसे जागृत अवस्था के वास्तविक अनुभव से कट जाती है। जो प्रतीति बाधित या खंडित हो जाती है वह कम सत्य मानी जाती है और जिस प्रतीति के द्वारा वह बाधित होती है वह अधिक सत्य। परंतु इन सब बाध्य बाधक प्रतीति के रहते हुए भी शुद्ध सत्ता या चैतन्य बाधित नहीं होता। जब हम रज्जु में आभासित सर्प को असत्य समझते हैं तब केवल सर्पाकार सत्ता का निषेध करते हैं, सत्ता मात्र का नहीं। इसी तरह जब हम स्वप्न के विषय को मिथ्या समझते हैं तब भी हम उस अनुभूति या अवगति की सत्ता को मानते हैं और तब हम ऐसे देश काल की कल्पना करते हैं जहाँ कुछ नहीं है।